मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने विषय चुना है यूनिक होने का मतलब। दरअसल आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह के लास्ट में मैंने बेस्ट और यूनिक, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों का उपयोग किया था आधार को लेकर, उसके तहत यूनिक की चर्चा की थी और मुझे इस बात की बहुत अधिक खुशी है कि स्टूडेंट्स ने इस पर बहुत अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कुछ लोगों ने इसे पसंद किया है, कुछ लोगों के दिमाग में इस ऑडियो ने कुछ उलझने भी पैदा कर दी हैं, कुछ इसके बारे में और स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, कुछ ने उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछकर उनके समाधान चाहे हैं। और इनफैक्ट सच पूछे तो इन सब को पढ़ने के बाद, इस तरह के मेल्स पढ़ने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई और खुशी इस बात की होती है कि चलिए आप लोगों ने उसे ध्यान से सुना, सुनने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी कहीं न कहीं खलबली भी मची, उथल पुथल हुई, तभी तो आप मेल लिखने की तकलीफ कर रहे हैं। अदरवाइज तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का मुहावरा भारत में, हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, जो जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, या आप लोगों के ईमेल को पढ़ने के बाद भले उनमें प्रश्न न पूछे गए हों, लेकिन वो दिखाई दे जाते हैं, उनकी झलक मिल जाती है कि नहीं, अभी बहुत क्लैरिटी तो नहीं आई है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ बातें और मुझे स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेल तो इस तरह के थे कि मैं बिल्कुल चौंक गया। चौंक इस मायने में गया कि जो मैं कहना चाह रहा था शायद मैं उसे उतने स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाया, चीजें और ज्यादा नकारात्मक रूप से आप तक पहुंची, या आपने उसे नकारात्मक रूप में लिया, या कहां क्या गड़बड़ी हुई मुझे नहीं मालूम। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ मेल ऐसे आए कि सर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि सर, जब आप कहते हैं कि आप सब यूनिक हैं, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम यही मान कर चलें कि चूंकि हम सब यूनिक हैं तो हम सब महान हैं और इसको लेकर के हम ईगो पाल सकते हैं और हम गलत भी नहीं होंगे। मित्रों, खासकर केंद्र में तो यही बात है आज के मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट के, और दूसरी और भी जो प्रश्न थे उनको भी मैं समेटने की कोशिश करूंगा कि आपको उनके भी थोड़े बहुत उत्तर मिल जाएं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मुझे लगता है कि कहां गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी यह हो रही कि मैंने कहा कि यूनिक का मतलब हुआ अनोखे, है ना, उसका मतलब बहुमूल्य नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, उसका मतलब अमूल्य नहीं हुआ। आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट दुर्लभ हुआ। दुर्लभ क्यों? कि इसके जैसा दूसरा कोई उपलब्ध है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर आप समुद्र के किनारे चले जाइए और रेत के कणों को उठाइए, ठीक है, रेत के कण है, दुनिया भर की संख्या में बिखरे हुए हैं, उसमें से 10 चुन लीजिए, 5 चुन लीजिए, दूर से आपको देखने पर सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन आप उन्हें फिर माइक्रोस्कोप से देखिए तो आपको पता लगेगा कि नहीं, जितने भी कण आपने इकट्ठे किए हैं उनके साइज में फर्क है, साइज के साथ ही साथ उनके आकृतियों में फर्क है, पता नहीं किन किन चीजों में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा, यानी कि जो एक कण है वो शेष कणों से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक कण यूनिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो गया कि प्रत्येक कण मूल्यवान है, प्रत्येक कण बहुमूल्य है, प्रत्येक कण अमूल्य है, यह नहीं हुआ। हाँ, यह दुर्लभ जरूर है कि इस साइज का या इस तरह का जो ये रेत का कण है, इसे मैं ढूंढने चलूं यहां पूरे के पूरे इस समुद्र के तट पर तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, यूनिक होने का मतलब यह होता है। मेरी समझ से शायद अब दिमाग में इस तरह की अगर बात आई हो कि हम तो भैया यूनिक हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो हम तो बहुत बड़े हैं, ये थोड़ा सा इसे समझना होगा। तो फिर मैंने बताया क्यों इसका मतलब, फिर अर्थ क्या हुआ, मुझे क्यों लेना चाहिए था इस टॉपिक को, है ना, आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं अब उस पर भी मित्रों आ रहा हूं। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने से पहले आपको एक सच्चा किस्सा सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल सच्चा। ये कहानी नहीं है, ये जीवन की सच्ची घटना है। नौशाद साहब को आप जानते हैं, नौशाद साहब जो फिल्मी इंडस्ट्री के बहुत ही महान संगीतकारों में रहे हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है, आमने सामने मुलाकात हुई है, और फिर खतो खिताबें भी उनके साथ होती रहती थी। नौशाद साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी, और याद रखिए, मतलब मुझे बातचीत के दौरान ये बात उन्होंने नहीं बताई, किसी से बताई होगी तो किसी मैगजीन में ये बात आई थी, और उस समय बकायदे नौशाद साहब जीवित थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वह गलत होती तो नौशाद साहब उसका खंडन भी कर देते, और बाद में मैंने नौशाद साहब से पूछा भी था कि ऐसा ऐसा था, क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी यह है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अनोखेपन का सही अर्थ मालूम हो जाए कि मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया। पित्रों, उन्होंने बताया कि जो तलत महमूद थे, जो बहुत अच्छे गायक थे, आपको नाम सुना होगा, पुराने गायक हैं तलत महमूद, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए और स्ट्रगल कर रहे थे, तब नौशाद साहब ने उनको एक गाने का मौका दिया कि ठीक है आ जाओ, तुम्हारी हम फलाने डेट पर रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। अब तलत महमूद साहब को चूंकि ये बिल्कुल शुरुआत थी उनकी, तो उन्होंने खूब रियाज करना शुरू कर दिया, खूब उन्होंने मेहनत की उस गाने पर, ताकि ये गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, हो सकता है कि इससे मुझे ब्रेक मिल जाए, मेरी ये जो गायन की जो इच्छा है उसका सिलसिला यहां से शुरू हो जाए। तलत साहब आए, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और तलत साहब ने जैसे ही गाना शुरू किया, नौशाद साहब ने रोक दिया। तलत साहब घबरा गए, अरे बाप रे ये क्या हुआ, मैंने तो इतना रियाज किया, इतनी मेहनत की, और उनको तो पसीना पसीना हो गए कि मतलब अब तो कैरियर खत्म। नौशाद साहब ने तलत साहब से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी आवाज में जो खरखराहट थी उसका क्या हुआ। तो तलत साहब ने कहा कि जो जनाब, जो मेरी आवाज में खरखराहट थी उसको लेकर के तो मैं बहुत परेशान रहता था, और मैंने इस बीच में कोशिश कर करके उस खराश को खत्म करने की ही कोशिश की है, और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि मेरी वो कोशिश कामयाब रही और अब वो खराश खत्म हो गई। नौशाद साहब ने क्या कहा, इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो अनुभव भी करने की कोशिश कीजिए। नौशाद साहब ने कहा कि तलत, वही तो तुम्हारी खासियत थी, वही तो तुम थे, वो जो खराश थी तुम्हारी आवाज की, वही तुम थे। अदरवाइज अगर मुझे इस गाने को मोहम्मद रफी जैसा ही गवाना होता तो मैं मोहम्मद रफी साहब से गवा लेता, तुमसे क्यों गवाता। तुम जाओ, उस खराश को वापस लेके आओ, और जिस दिन तुम्हारी आवाज में वो खराश वापस आ जाए, रिकॉर्डिंग के लिए आ जाना। तलत साहब गए और उन्होंने वो खराश फिर से हासिल की, उसके लिए फिर से उन्होंने रियाज किया। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये छोटी सी जो सही घटना है, इससे शायद आपको यूनिक होने का मतलब समझ में आ जाए। यूनिक होने का मतलब है कि हम सबके अंदर प्रकृति का दिया हुआ कोई एक विशिष्ट गुण है, लेकिन हम ये मान लें कि साहब ये विशिष्ट गुण ही बस हम सब कुछ हमको दुनिया में आगे ले जाएगा, तो नॉट एट ऑल। वो एक रॉ मटेरियल के रूप में, आप यूं कह लीजिए कि एक कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्ची वस्तु के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। हमें उसे मांझना पड़ेगा, हमें उसे संवारना पड़ेगा, हमें उसे परिष्कृत करना पड़ेगा, उसका परिष्कार करना पड़ेगा, यानी कि उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, मेहनत करके उसे सजाना और संवारना पड़ेगा। जंगल में लकड़ियां हैं, लकड़ियों की अपनी कीमत है, जलाऊ लकड़ी के रूप में वो लकड़ियां जल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट की नजर ऐसी पड़े कि यार ये तो एक बहुत अच्छा एक मॉडल बन सकता है, एक बहुत अच्छा ये तो कलाकृति बन सकती है, किसी को लगेगा कि इससे तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जा सकता है, वो उसे लाएगा, सजाएगा, संवारेगा, परिष्कार करेगा, काटेगा, छाटेगा, रंगेगा, और पता लगा कि वही लकड़ी जो वैसे 500 रुपए में बिक जाती अब वो 500,000 रुपए की हो गई है। तो लकड़ी तो वही है, लेकिन उसे परिष्कृत किया गया, उसका परिष्कार किया गया। और याद रखिए कि ऐसा नहीं किया गया कि इस लकड़ी से बन तो केवल टेबल ही सकती है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि इसकी जगह टेबल की जगह मैं इससे अलमारी बनाऊं, और पता लगा कि ना तो वो टेबल बन सके ना अलमारी बन सके। मित्रों, यूनिकनेस के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको खुले दिमाग से सोचना होगा। जब तक आप खुले दिमाग से नहीं सोचेंगे, तब तक वो चीजें आ नहीं पाएंगी जो वास्तव में मेरे कहने का मतलब है। मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ प्रश्न इस तरीके के भी थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमारे सामने जो आदर्श होते हैं, जो मॉडल होते हैं, हमें उन मॉडल को कभी फॉलो ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी वो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। अगर बहुत ही संकीर्ण मस्तिष्क से आप सोचेंगे तो बिल्कुल आपका सोचना 100% सही है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके सोचेंगे, उसके भावार्थ पर जाएंगे, तो पता लगेगा कि आप गलत सोच रहे हैं। आदर्श का मतलब उसकी कार्बन कॉपी बनना नहीं होता है, आदर्श का मतलब होता है उससे प्रेरणा प्राप्त करना, इंस्पिरेशन हासिल करना, एकदम उसके जैसा बन जाना नहीं। वो तो है, उसके जैसा बन करके हम करेंगे क्या, और कितनी भी कोशिश कर ले हम बन ही नहीं पाएंगे। दुनिया को, समाज को नए लोग चाहिए। सम्मान जो होता है या इतिहास में जो नाम दर्ज होता है वो नए लोगों का होता है, पुराने लोगों का नहीं, या उनको जो फॉलो करते हैं उनको नहीं। तो वो जो मॉडल होते हैं मित्रों, वो हमारे लिए आदर्श होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं, वो सांचे नहीं होते, खांचे नहीं होते कि हम अपने को पिघला करके बिल्कुल उस खांचे में ढाल दें ताकि हम बिल्कुल उस जैसे बन जाएं। इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि जो प्रश्न मेरे सामने आए थे उनमें से काफी के उत्तर शायद इसके माध्यम से मिल गए हों, और यदि फिर भी कोई उत्तर अनुत्तरित रह जाता है, उत्तर नहीं मिल पाया हो, तो आपने संकोच रूप में मुझे लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरीके से मैं आपकी उस जिज्ञासा को शांत करूं। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।